आजकल हम सब एक अजीब सी मानसिक थकावट महसूस करते हैं ना।
बिल्कुल।
सोशल मीडिया की वो अंतहीन स्क्रॉलिंग, नेगेटिव न्यूज और दिमाग में मतलब लगातार चलते रहने वाले फालतू के विचार,
ऐसा लगता है जैसे हमारा मन एक ऐसी धर्मशाला बन गया है जिसमें कोई भी आके ठहर जाता है।
हाँ, बिना इजाजत के। इसे कैसे रोका जाए? इसी सवाल का एक बहुत ही दिलचस्प और प्रैक्टिकल जवाब हमें दशकों पहले लिखे गए एक संकल्प में मिलता है।
हाँ, और ये कोई साधारण संकल्प नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य द्वारा रचित हमारा युग निर्माण सत्संकल्प की।
अच्छा,
आज हम इसके तीसरे संकल्प पर गहराई से बात करेंगे, जो आज की इस डिजिटल और क्या कहते हैं मानसिक शोर शराबे वाली दुनिया में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है।
बिल्कुल।
तो मिशन ये है, हम इस तीसरे संकल्प को समझेंगे जो कहता है मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे।
हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई मन की सफाई के लिए एक असरदार फॉर्मूला है और इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं।
शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दूं, पूज्य गुरुदेव ने इसे सिर्फ एक व्यक्तिगत आदत के तौर पर नहीं देखा था।
अच्छा,
ये एक बड़े मिशन का हिस्सा है, अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाना, परिवार में अच्छे संस्कार लाना और समाज को आगे बढ़ाना। और इसकी शुरुआत होती है हमारे मन के स्वास्थ्य से,
जिसे हम अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं।
बिल्कुल।
सत्संकल्प की शुरुआत ही एक बड़ी मजेदार तुलना से होती है। उसमें कहा गया है कि जैसे लोग शरीर को सजाने संवारने, अच्छे कपड़े पहनने पर तो खूब ध्यान देते हैं,
हाँ, बाहरी दिखावे पर,
हाँ, लेकिन अंदर से उसे मजबूत और सेहतमंद बनाने की फिक्र नहीं करते। ठीक वही हाल हमने अपने मन का कर रखा है। हम मन मानी करने को आजादी समझते हैं, लेकिन मनोबल यानी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने पर काम नहीं करते।
और दूसरों को तंग करने जैसे बुरे कामों में लग जाता है। उसमें एक बहुत दमदार लाइन है कि आज दुनिया में जो अपराध और बुराई दिख रही है वो असल में अस्वस्थ मन का उपद्रव है।
वाह, अस्वस्थ मन का उपद्रव, ये तो सोचने पर मजबूर कर देता है।
बिल्कुल, बीमार दिमागों का मचाया हुआ हंगामा।
लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है। अगर यही मन सही दिशा में मुड़ जाए, यानी खुद को सुधारने और बेहतर बनाने में लग जाए, तो हमारी जिंदगी में कमाल के बदलाव आ सकते हैं।
सही कहा।
तो ये सिर्फ समस्याओं से बचना नहीं है, बल्कि अपनी असली क्षमता को अनलॉक करने जैसा है।
बिल्कुल। तो ये संकल्प हमें समस्या और समाधान दोनों एक साथ देता है। ये हमें आईना दिखाता है कि मन को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक है, लेकिन साथ ही एक रोड मैप भी देता है कि सही दिशा में एक छोटा सा कदम भी कितना बड़ा बदलाव ला सकता है।
ठीक है, तो फिर वो रोड मैप क्या है? मन को सही दिशा में मोड़ने का तरीका क्या है? यहाँ सत्संकल्प दो बहुत ही शक्तिशाली आप कह सकते हैं टूल देता है, स्वाध्याय और सत्संग।
स्वाध्याय और सत्संग,
ठीक है। पहले स्वाध्याय को समझते हैं। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, जैसे कोई स्कूल का होमवर्क हो। इसका असली मतलब क्या है?
हाँ, ये कोई परीक्षा की तैयारी नहीं है। स्वाध्याय का मतलब है ऐसी बेहतरीन पुस्तकें पढ़ना जो हमारे अंदर अच्छे विचार जगाएं, हमारी उलझनों को सुलझाएं और हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करें। यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है, स्वाध्याय हमारे मन का भोजन है।
मन का भोजन,
हाँ, जैसे शरीर को खाना चाहिए वैसे ही मन को अच्छे विचार चाहिए। बुरे और गंदे विचारों से मन बीमार, कमजोर और दुखी होता है। उन विचारों से मन को बचाना हमारा फर्ज है और स्वाध्याय उस फर्ज को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है।
और दूसरा टूल है सत्संग। इसका मतलब तो हम सब जानते हैं, अच्छे और ज्ञानी लोगों के साथ बैठना, उनसे बात करना। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है।
क्या?
आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में ऐसे सुलझे हुए ज्ञानी लोग मिले कहाँ? और मिल भी जाएं, तो उनके पास हमारे लिए समय कहाँ है?
बिल्कुल सही सवाल है। और सत्संकल्प इस हकीकत को स्वीकार करता है, इसीलिए वो स्वाध्याय के महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देता है।
अच्छा, वो कैसे?
यहाँ एक कमाल का आइडिया दिया गया है। महान लोगों की लिखी पुस्तकें पढ़ना भी एक तरह का सत्संग ही है।
वाह,
यह एक तरह का टाइम ट्रैवल है। इसके जरिए हम कभी भी कहीं भी दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों के साथ बैठ सकते हैं, चाहे वो आज जिंदा हो या सदियों पहले गुजर चुके हों।
ये तो एक तरह का हैक हो गया। मतलब अगर आपके आसपास अच्छी संगति नहीं है तो आप अच्छी पुस्तकों के जरिए दुनिया के सबसे महान विचारकों और संतों की संगति पा सकते हैं।
बिल्कुल,
ये तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो अकेला महसूस करते हैं या जिन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता।
बिल्कुल, अच्छी पुस्तकें वो दोस्त हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ती और हमेशा सही सलाह देती हैं। ये समय और जगह की सीमाओं से परे हैं। यह सत्संग का सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली रूप है।
अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यह सब काम कैसे करता है? मतलब सिर्फ अच्छी बातें पढ़ने से मन के अंदर का कचरा साफ कैसे हो जाता है? सत्संगल में कुछ कमाल के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे लोहा लोहे को काटता है या कांटे को निकालने के लिए कांटा ही काम आता है। पर मेरा पसंदीदा उदाहरण है ग्लास वाला।
हाँ, कि अगर किसी ग्लास से हवा निकालनी हो तो उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसमें पानी भर दीजिए।
पानी भर दीजिए, हवा अपने आप बाहर।
हाँ, हवा अपने आप बाहर निकल जाएगी। इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। मन कभी खाली नहीं रह सकता।
अच्छा।
वो एक छोटे बच्चे की तरह है, उसे हर वक्त कुछ ना कुछ करने को चाहिए। अगर आप उसे अच्छा काम नहीं देंगे तो वो शरारत करेगा ही।
तो इसका मतलब ये हुआ कि बुरे विचारों से लड़ना या उन्हें दबाना सही तरीका नहीं है।
बिल्कुल नहीं, लड़ने से वो और मजबूत होते हैं। सत्संकल्प का आइडिया है स्ट्रेटेजिक सब्स्टिट्यूशन, यानी
रणनीतिक प्रतिस्थापन।
हाँ, आप बुरे विचारों को हटा नहीं सकते, आप उन्हें अच्छे विचारों से बदल सकते हैं। जब आप अपने मन को प्यार, हिम्मत, ईमानदारी और सेवा जैसे अच्छे विचारों से भर देते हैं तो बुरे विचारों के लिए वहां जगह ही नहीं बचती।
मतलब बुरे विचारों को नो वैकेंसी का बोर्ड दिखाना है। सत्संकल्प में एक और खूबसूरत उपमा है कि कुविचार उस मुसाफिर की तरह हैं जिसे भरी हुई धर्मशाला में जगह नहीं मिलती।
बिल्कुल,
वो दरवाजा खटखटाते हैं, देखते हैं कि सब कमरे भरे हुए हैं और चुपचाप वापस चले जाते हैं।
बिल्कुल, यही बात है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, सत्संकल्प में इसके प्रैक्टिकल उदाहरण भी हैं। मान लीजिए आपके मन में स्वार्थ या कामचोरी का विचार आया, तो उससे लड़ने के बजाय आप किसी मेहनती और ईमानदार व्यक्ति की सफलता के बारे में सोचें या पढ़ें। वो अच्छा विचार आपके बुरे विचार की हवा निकाल देगा।
अच्छा।
या अगर किसी पर बहुत गुस्सा आ रहा है तो उस पर चीखने के बजाय एक पल रुककर उसकी किसी मजबूरी या अच्छाई के बारे में सोचिए। हो सकता है आपका गुस्सा करुणा में बदल जाए।
ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा मन तो अक्सर एक शांत धर्मशाला जैसा नहीं बल्कि एक अस्त व्यस्त रेलवे स्टेशन जैसा लगता है।
जहाँ हर तरह की गाड़ियाँ आ जा रही हैं, ऐसे में ये सब शुरू कैसे किया जाए जब स्टेशन पर पहले से ही इतनी भीड़ हो?
बहुत अच्छा सवाल है। ये रातों रात नहीं होता, ये एक प्रैक्टिस है, एक व्यायाम है, और सत्संकल्प इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए कुछ ठोस कदम बताता है।
जैसे कि सबसे पहला और जरूरी कदम, स्वाध्याय के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। ये ऑप्शनल नहीं है, ये उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए भोजन। बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा।
ठीक है, मान लिया समय निकाला, फिर क्या?
दूसरा कदम, अपने घर में एक छोटा सा पुस्तकालय बनाएं। कुछ चुनी हुई प्रेरणादायक पुस्तकें जिन्हें आप बार बार पढ़ सकें।
एक पर्सनल लाइब्रेरी।
हाँ। तीसरा, ज्ञान को बांटें। अच्छी पुस्तकें दोस्तों को दें, परिवार में पढ़कर सुनाएं। ज्ञान लेने और देने दोनों को एक पवित्र काम समझें। और सबसे महत्वपूर्ण, इसे परिवार में एक आदत बनाएं। हफ्ते में एक बार सब मिलकर बैठें, कोई अच्छा लेख पढ़ें, उस पर बात करें। इससे पूरे घर का माहौल पॉजिटिव बनता है।
परिवार में साप्ताहिक सत्संग, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसे बिना बोरिंग बनाए या किसी पे थोपे बिना कैसे किया जा सकता है?
इसे एक मजेदार चर्चा की तरह करें, लेक्चर की तरह नहीं। कहानी सुनाएं, सवाल जवाब करें। और इसे एक नियम बनाने के लिए सत्संकल्प में एक बहुत सुंदर सूत्र दिया गया है।
क्या?
भोजन से पूर्व साधना व शयन से पूर्व स्वाध्याय।
भोजन से पूर्व साधना व शयन से पूर्व स्वाध्याय,
यानी खाने से पहले कुछ देर ध्यान या प्रार्थना और सोने से पहले कुछ पन्ने स्वाध्याय। ये हमारे मन का आत्मिक अन्न जल है।
आत्मिक अन्न जल, वाह।
जैसे शरीर को खाना पानी रोज चाहिए, वैसे ही हमारी आत्मा को अच्छे विचार और अच्छी भावनाएं रोज चाहिए।
ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ उन लोगों का भी ध्यान रखा गया है जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। उनके लिए क्या समाधान है?
यही तो इस दर्शन की खूबसूरती है, ये सबके लिए है। जो पढ़ नहीं सकते उनके लिए सत्संग मुख्य उपाय है।
अच्छा।
वो प्रेरणादायक बातें सुन सकते हैं। असली लक्ष्य तो विचारों को बदलना है, माध्यम कोई भी हो, विचार बदलते ही इंसान का जीवन बदल जाता है। आप पढ़ के बदलें या सुन के, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब अगर हम इसे और बड़े नज़रिए से देखें तो ये सिर्फ इस जिंदगी को सुधारने की बात नहीं है। सत्संकल्प कहता है कि हमारे मन में सिर्फ इस जन्म की ही नहीं बल्कि न जाने कितने जन्मों की गलत आदतें और गहरी मान्यताएं भरी होती हैं।
आप कहना चाहती हैं कि हम सिर्फ आज की समस्याओं से नहीं बल्कि अपनी बहुत पुरानी मानसिक प्रोग्रामिंग से लड़ रहे हैं।
बिल्कुल, ये हमारे अंदर के गहरे संस्कार हैं। स्वाध्याय और सत्संग एक तरह की मानसिक और आत्मिक सफाई का काम करते हैं जो धीरे धीरे परत दर परत इन पुरानी परतों को साफ करती हैं।
अच्छा,
ये ज्ञान पाने और सही गलत में फर्क करने की समझ यानी विवेक जगाने के लिए पहली शर्त है।
सत्संकल्प में एक बहुत शक्तिशाली बात कही गई है, हमारे विचार उस सांचे की तरह हैं जिसमें हमारा जीवन ढलता है। हमारा पूरा जीवन हमारे विचारों का ही एक आईना है।
हाँ, ये आइडिया जितना सरल है उतना ही गहरा भी।
बिल्कुल, और अंत में एक चेतावनी भी है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है, स्वाध्याय के बिना विचारों की सफाई नहीं होती है।
ठीक है, विचारों की सफाई के बिना विवेक नहीं जागता, विवेक के बिना सच्चा ज्ञान नहीं मिलता,
और जहां ज्ञान नहीं
वहां अंधेरा और दुख तो होंगे ही।
मतलब अगर हम इस चेन की पहली कड़ी यानी स्वाध्याय को ही छोड़ देते हैं तो हम खुद को दुख और अंधेरे के एक चक्र में फंसा लेते हैं।
हाँ, सत्संकल्प कहता है कि अज्ञानी व्यक्ति तब तक दुखों को झेलता रहता है जब तक उसे ज्ञान की रोशनी नहीं मिल जाती, और ये रोशनी स्वाध्याय और सत्संग के दरवाजे से ही अंदर आती है।
तो आज की इस पूरी चर्चा का सार मेरे लिए ये है कि मन का स्वास्थ्य शरीर के स्वास्थ्य से भी ज्यादा जरूरी है, और बुरे विचारों से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका लड़ना है ही नहीं
बिल्कुल,
बल्कि उनकी जगह अच्छे और शक्तिशाली विचारों को लाकर खड़ा कर देना है। ये एक तरह की मेंटल इंटीरियर डिजाइनिंग है। आप अपने मन को इतने अच्छे विचारों से सजा दें कि नकारात्मकता के लिए कोई जगह ही ना बचे।
आपने बिल्कुल सही समझा कि कोई हवा हवाई दर्शन नहीं है बल्कि गुस्सा, स्वार्थ और नेगेटिविटी जैसी रोज की मानसिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। सत्संकल्प में तो अच्छी पुस्तकों को जीते जागते देवता कहा गया है और उनका अध्ययन करना उनकी पूजा करने जैसा है। ये स्वाध्याय को एक बहुत ऊंचा और पवित्र दर्जा देता है।
वाह, तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। सत्संकल्प कहता है कि हमारे विचार वो सांचा हैं जो हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। अगर ये सच है तो सोचने वाली बात यह है कि इस वक्त आप अपनी जिंदगी को ढालने के लिए कौन सा सांचा इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसी कौन सी एक पुस्तक या कौन सी एक बातचीत हो सकती है जो आपके इस सांचे को और बेहतर बनाने में मदद कर सकती है।